फिर इसी तरह से इंसान की कामयाबी का साइज़ अगर इसकी सोच के साइज़ के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी कामयाबी, तो बड़ा सोचने में क्या बुराई है? बड़ी सोच रखने में क्या रुकावट है? क्या बुलंद सोच पे कोई टैक्स अदा करना पड़ता है या हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है? कभी किसी को बुलंद सोच रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया? अब आप कहेंगे ये कैसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सोचें, यानी आपको सोचना सिखाया जा रहा है कि क्या बुलंद सोचने पे पैसे लगते हैं। वो हमारे यहाँ कहते हैं चलो भाई देख आते हैं, देखने के कोई पैसे हैं, कहते हैं ना ऐसे। तो आपको मैं कहती हूँ कि बुलंद सोचें। चलिए जरा मैं आप सबसे सोचवाऊँ, जरा अपने अपने बारे में हम कुछ सोचते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं 2020, 5 साल ले लेते हैं, जिंदगी रही, ऑफकोर्स जिंदगी का तो पता नहीं, अगर रही तो आप क्या सोचती हैं कि आप कहाँ देखना चाहती हैं खुद को?
ये कि दिन के काम और अच्छे तरीके से करते देखो सकती हूँ।
पक्की बात है, सोच के बोलिएगा। ये कहती हैं कि दीन के कामों को और अच्छी तरह करना चाहती हूँ। जी ऑनलाइन वाले भी लिखें। जी आप
यही अगर वो मैं सोचती अगर मैं पहले दीन से ना जुड़ी होती तो मैं अपने आप को एक फिल्मा में लेते रखी इस तस्वीर से। चल सोच रही थी अगर आप जैसे कि दीन में आप यही है कि अल्लाह का ये सिस्टम इतना प्यारा कि अंडर काम करने वाले
हो सकता है ना,
सिखाने वाले।
ख्वाब तो है ना, देख सकती हैं ना अब ये ख्वाब। जी आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को?
इंशाल्लाह इसी जगह अपने आप को देखूंगी
इसी जगह बहुत बेहतरियों के साथ। जी
इंशाल्लाह।
आप
मैं आपकी तरफ फिरौन को समझना चाहती हूँ।
मेरी तरह क्यों, आप ये कहें आपसे भी अच्छा सीखना चाहती हूँ, आपसे भी अच्छा समझना चाहती हूँ। देखिए सुबह आप जा रही थी अपनी बच्ची को लेके ना, ये मैं सुबह आई तो ये खड़ी थी गाड़ी में, बच्ची थी, तो ताहिरा ने कहा कि जुनैरा भी अभी आई है ना, तो हालांकि हम लेट थे, मतलब हम समझ रहे कि मुझे तो जब भी आना था लेकिन हम 9 पे नहीं आए, 9 से बाद में आए। तो जब खड़े हुए तो पता चला ये आ नहीं रही, बल्कि मुझे इनका लेट आने पे थोड़ा सा मेरा दिल दुखा कि जुनैरा तो लेट नहीं आती, ये क्यों लेट आई है, लेकिन पता चला ये आ नहीं रही, ये जा रही है। क्या हुआ, बच्ची ने क्या कर दी ना, वॉमिट कर दी है। तो फिर कुछ ताहिरा ने कहा, कुछ मैंने कहा कि आप आइए इधर तो और भी संभाल लेंगे, तो घर जाएंगी तो क्या करना है, और बच्ची का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी शाम का या जब भी क्लास के बाद का, तो ये आ गई, फायदा हुआ। आप सच बताएं, मैं माइंड नहीं करूंगी,
नहीं, बहुत फायदा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा।
आप इस वक्त अगर उस 9:30 पे घर जा चुकी होती हैं, अब 2 घंटे गुजर चुके होते हैं, तो आप इन 2 घंटों को भला कैसे गुजार रही होती?
वैसे ही जाया था बिल्कुल।
बच्ची रोती, आपकी गोद में वॉमिट करती, आप संभालते, अब कौन संभाल रहा है? अल्लाह वाले संभाल रहे हैं ना। देखिए मैं तो कहती हूँ जिनके बच्चे अल्लाह ना करे बीमार है, वो घर से बस इधर तक आ जाएं, यहाँ तो 6 माएँ बैठी हैं, वो आपसे ज्यादा प्यार से संभालेंगी, राइट ना? तो आप ये तो ना सुनते, और गिल्ट आपको लग होना था, तो कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, लपेट लपाट के उनको बना बनू के सवार के कंबलों में लपेट के ले आए, कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चे सख्त जान हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों पे मुझे कितना दुख होना था इस बात का कि अल्लाह इनकी बच्ची को आज वॉमिट आई तो क्यों आई, तो ये मोहब्बत की बात है ना। जी आप कहाँ देखना चाहते हैं खुद को 5 साल में?
मैं सोचती हूँ जो मेरे अपने हैं मैं चाहती हूँ कि उनको भी
यानी
इसी
आप ये
रास्ते पे
चाहती हैं कि
लाऊं।
आपके अपने खानदान में भी दीन आ जाए।
जी
अच्छी सोच है, हम सब क्यों नहीं चाहिए, अपने शहर अपने मुल्क का
जी
हक अदा करें। यानी 5 साल बाद आप चाहती हैं कि आपके घर वाले भी आपके साथ दीन में भाग रहे हों।
जी मैं अपने कुरान को और बेहतर करना चाहती हूँ और अपने कलमा को और दूसरों को भी सिखाना चाहती हूँ तजवीद।
ठीक है जी, नेक्स्ट।
मैं जो काम कर रही हूँ उसमें ज़्यादा और मजबूती के साथ और अच्छे तरीके से तो साथ में चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे मैंने ये काम कर।
ठीक है जी, बाजी आप क्या सोचते हैं, आप 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं?
मेरा जो अभी फिलहाल जो यहाँ पे अल्लाह ताला लेके आए हैं तो यही दुआ है दिली तौर पे कि अल्लाह ताला जी जो मेरा एक ख्वाब था मेरे दिल को सीखा है और मजीद अगले 5 सालों में इधर भी बहुत ज्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट और लेसन के अंदर एक
बड़ा सा स्कूल बन जाए,
सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर वहां पर भी कुरान क्लास चले।
बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑनलाइन पे एक दो कमेंट है उनको पढ़ लेते हैं। ये लिखती हैं कि कुरान पाक को समझने की पूरी कोशिश, डू समथिंग मोर फॉर दी उम्मा, बी अ बेटर मुस्लिम, यानी उम्मत के नाते से हमें उभरना है, बी अ रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स, दूसरों को सिखाना चाहती हूँ, अल्लाह ताला हमारे दीनी कामों में बरकत डाल दें, दाइये दीन लोगों को अल्लाह से जोड़ना चाहती हूँ, कोई ऐसा अमल जो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, गुड शाबाश, अपने प्यारों को साथ लेके चलना है। अब आप मुझसे पूछे मेरा क्या गोल है 5 साल बाद जिंदगी के बारे में, है गोल कोई? फिर बाद में आपने कहना जो आपका गोल है वही हमारा गोल है। मैं सच बताऊं आपको, मैं कभी गिव अप नहीं करती। ये मैं जितनी बातें आपको पढ़ाती हूँ, बुक तो मेरे हाथ ही अचानक लगी है और ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप लें, क्योंकि आप ये बातें सुन रहे हैं तो भी बहुत है, अच्छी बुक है, लेकिन उसमें से मैं कुछ चीज़ें एडिट भी करती हूँ पढ़ाते हुए, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मेरा ख्वाब क्या और मुझे वो हकीकत दिखता है, मैं ये देखती हूँ कि 2020 में, यकीन करें मैं आपके शहर ही की बात करूँगी, हमारी एक यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, आप जैसे लोग डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप क्लासों में 8, 10, 20, 50 जितने भी लोग आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा एक बहुत ऑर्गेनाइज स्कूल होगा, लोग अब हमें समझ चुके होंगे और दाखला नहीं मिलेगा लोगों को। 1 साल का कोर्स मेरा ड्रीम है हमेशा, मुझे ये लंबे खेल नहीं अच्छे लगते, 10-10 साल 8-8 साल ये ठीक है, टेस्ट डेवलप करें, लोग इधर क्लास लें 2 दिन की, उधर लें शाम की, लें लें दें, लेकिन स्कूल में जब लोग आए तो वो आए जैसे आप किसी जगह पढ़ने जाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये होगा, मैं इसको कैसे समझती हूँ आपको, मैं सच बताऊँ मैंने कई दफ़ा ये बात शेयर की है अपनों प्यारों से, जिनसे भी मैं अपने दिल की बातें करती हूँ, कि नॉर्वे हमारा मक्का है। कैसे? नबी सल्लम का मक्की दौर है ये। आपको होता है कि 13 साल में 100 कुछ लोग तैयार हुए थे, 4-3। अब कभी किसी क्लास को शुरू करें तो थोड़े लोग होते हैं ना, तो मेरा दिल बुरा नहीं होता, मुझे ये दुख होता है कि हमारी कोशिश कम होगी, या हम वहाँ जा नहीं सके, या जो जा सकते थे जिनको पता है वो नहीं आए, जो आ सकते थे वो नहीं आए, लेकिन मैं नहीं घबराती। आपको पता है कि शाम का जो नया कोर्स है उसमें कितने लोग आ रहे हैं डेडिकेशन के साथ, जिसको स्टूडेंट कहेंगे 3 लोग हैं, और स्टाफ के कितने लोग उस वक्त आते हैं, कितनी दूर से आते हैं। लेकिन कल जब क्लास शुरू हुई, कल मैंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, शाम को क्लास तो टाइम पे करनी होती है शुरू, तो जब क्लास शुरू हुई, शुरू में दुआ चल रही थी, दुआएं, तो मैंने अंदर आके देखा तो कितने स्टूडेंट थे, एक, और वो स्टूडेंट वो थी मुझे पहली बार मिल चुकी कि जिनके बारे में मुझे परसों डाउट था कि उनके मियाँ कुछ उन पर रोप डाल के रख ही ना लें घर पे, लेकिन कल मैं निकलने लगी नीचे वॉक के लिए, तो दरवाजे से भागते हुए मुझे दिखा एक वो थी, मैंने उनको देख के ऐसे हाथ कर दिया, मेरा हाथ खुद ही खुल गया, मैंने उनको हक दिया, और क्योंकि वो 10-12 मिनट पहले आ रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह आप आ गए सीखने, जब वो आई तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके मेरे दिल में एकदम आया कि बाकी दो, लेकिन ये एक आ चुकी थी, ये डाउटेड थी, 2 का मुझे पता था आएंगे। मैं नीचे उतरी, जब सीढ़ी से निकल के गए ना, तो ऊपर वहां से जाते हैं ना, तो इधर आपको तो ऊपर बस रुकती है, तो मैंने देखा बस में से एक लड़की निकली है और तकरीबन भागती हुई नीचे आ रही है इधर से, आप तो समझ ही रहे हैं ना, तो स्लोप से, तो मैंने देखा तो वो दूसरी बच्ची थी, और मुझे समझ आ गई कि इसकी बस लेट है, या ये पिछली बस में नहीं आई तो वो 5-6 मिनट लेट हो गई, क्लास शुरू हुए 3-4 मिनट ही हुए थे अभी, हर वो भाग रही थी आ रही थी। तीसरी बच्ची का मुझे पता था कि वो भी कहीं से आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों भी, कल और लिसनर्स भी आ गए कुछ, लेकिन मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहा कि अल्लाह तू क्यामत के दिन हमारी ये नेकी कबूल करना कि हमने तेरे नबी की उस बात पे अमल किया है कि अली अगर तेरी कोशिश से कोई एक भी हक पे आ गया तो तेरे लिए ये सुर्ख होंठों के मिलने से बेहतर है। फिर एक के साथ भी हम वैसे ही करेंगे, हाँ मुझे दुख कब होगा, और मैंने पहले सोचा ये एक बैठी है तो इस वक्त इस क्लास की खिदमत के लिए कितने लोग हैं, एक टीचर स्टेज पे, एक टेक्निकल पे, एक बाय रिसेप्शन पे, 3 लोग तो कम से कम हमें चाहिए ही होते हैं, चाहे वो सबील खुदा हो, चाहे वीकेंड है या वीकडे ऑफ है कुछ है, और उस वक्त बाहर बच्चों की क्लास ही लोग और भी थे स्कूल में, लेकिन इस क्लासरूम में 3 ही लोग थे ना, फिर बाद में अल्लाह ने भेजा, तो मैंने दिल में सोचा अल्लाह मैं कहाँ से डमी लोग बनाऊं कि उन्हें कह दूं ऐसे ही आके बैठ जाओ, सिर्फ इसलिए कि कहीं साथी ये ना सोच लें कि अब एक 3 लोगों के लिए इतनी मेहनत क्या करनी है, मुझे खौफ आता है इस बात से, लेकिन आप हमारी इस आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जब भी बताइए कि एक बंदे के लिए भी उतनी ही क्लास की मैनेजमेंट, टाइम टेबल, रोल कॉल, एवरीथिंग जितनी 100 के लिए होगी, कई क्लासों में बहुत भी आते हैं, है ना, लेकिन ये शाम का वक्त है अभी लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम क्या है कि देखिएगा एक दिन ये सारी कुर्सियां भर जाए। इसी तरह मैं सोचती हूँ कि अब फुल टाइम जो बंदा 10 देखिए ना, हफ्ते में 5 दिन कोई आके आपके साथ 5 घंटे गुजार के 25 घंटे लगा के जाती है ना यूसुफ अल सलाम, तो आप क्यों इसमें 100 मांगते हैं? 10 भी बहुत है। क्यों आप वन सभी क्लास शुरू करें, 100 लोग आ जाए, तो 100 लोग आएंगे तो वो कब कुरान पूरा करेंगे? 10 साल में। तो 10 साल में 100 सीखे, तो अगर एक साल में 10 है तो दूसरे साल 10 है, तो एंड पे 10 साल में कितने हो गए? 100 ही हो गए ना, कभी ना नंबर गिने। और मैंने ना अल्लाह से एक मौके पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे कभी अपने साथियों के स्टूडेंट्स के हेड काउंट पे ना डालना, मुझसे कोई पूछे भी ना कितने आते हैं, मैं कभी नहीं बताती, मेरा दिल ही नहीं करता मुंह पे आए। मैं कहती हूँ ये मुझे पता है कि जो नहीं आ रहे वो बहुत ज़्यादा है, जो आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें ही मान देती हैं। मैं इसको हार नहीं मानती, एज इट इज़ के काम करने वाले मौजूद हैं। आप जैसे डेडिकेटेड लोग हैं, किसी भी शहर के इदारे को जाके देख लें, पिछले 5 साल में इतने डेडिकेटेड लोग उनके पास कोई नहीं है जितने आपके पास हैं, है ना? मजबूरियों में लड़ झगड़ के आते हैं, खुद से मारे खाते हैं, हालात के तपेड़े खाते हैं, आते तो है ना, हो तो है ना, तड़प तो। और ये कौन सी चीज़ देती है? ये कुरान। और ये जो मैंने आपको 3 स्टूडेंट्स बताए ना, तीनों देखिएगा अल्लाह इनको जमाए रखे, ये अब आपसे भी शाप है, आंखों में आंखें डालने लगे। उनमें से एक स्टूडेंट एक दिन पहले ही शेयर कर रही थी कि मैं तो बड़ी खुश होकर यहाँ से गई, मैंने बड़े जोश से सूरह फातिहा की बात की घर में, तो मेरे मियाँ ने मुझे ठंडा कर दिया। क्या कहा? मैंने कहा उन्होंने क्या कहा? कहती मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं तो मेरे मियाँ अच्छे हैं, कहती दीनदार हैं, खुश हैं मेरे आने पर, वो खुद भी सुनते हैं, लेकिन कल मैं गई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी और लेट हो जाता है, मेरी भी जॉब है, वो भी कोई ऐसे काम करते होंगे, तो तुम घर रहो और मेरे माँ बाप को देखो, उनकी टेक केयर करो, वो तुम्हारी दीन है इबादत है, तो इस वक्त ना जाओ। तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? कहती मैंने उनको कायल कर लिया। कहती मैं यकीन करें यहाँ आने के लिए सुबह से इस तरह से काम करके छोड़ के आई हूँ कि उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा मैनेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह उनको आते ही रखे आगे भी। तो ये याद रखिए कि गोल के हमने आगे जाना है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारा सब्र है ना ये जाया नहीं जाएगा। ये जो मक्का के 13 साल का सब्र था ना, दुश्मनियाँ, अब काफ़ी लोगों ने तो हमें एक्सेप्ट कर ही लिया। मैं जब इधर सैर के लिए जाती हूँ और रस्तों में लोग, और ये सारी पूरी आप देखिए हमारे बिल्डिंग्स ये मुसलमानों की हैं, और मज़े की बात कहूँ या तकलीफ की कहूँ कि जितने लोग आते हैं वो बाहर से ज़्यादा आते हैं, इधर वाले कम क्यों आते हैं? शुरू के प्रोपेगंडे, ये वहाबी हैं या ये फलाँ हैं ये वो है, तो हिम्मत थोड़ी हारनी है। मैं कहती हूँ अभी भी जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह अगर हम इन लोगों तक खिलाएं पिलाएं दावत दें इनको बातें करें इनसे, तो अल्लाह एक एक करके लाएगा। कई साथियों से मेरी ऐसी रात जाते बातें होती हैं, तो बस हम अपने एक स्ट्रगलिंग दौर में है ना, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि एक दिन आप देखिएगा कि ये जगह भरेंगी। अभी भी अहमत है, आप लोगों से पूछें तो वो लोगों के तो जहनों में यही कुछ है ना कि इधर बड़े लोग आते हैं, इनके वॉलंटियर बहुत हैं, इनके टीचर बहुत हैं, लोग हमारी मिसालें देते हैं, लेकिन ये हम आपस में अपना दुख सुख क्यों कह रहे हैं कि हमने इस पर रुकना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रहा है, मैं तो वो कहती हूँ कि इसके बाद भी क्लास शुरू हो जाए, इसके बाद अच्छे इस क्लास के दौरान 2 के बीच में भी शुरू हो जाए। और आपको पता है कल मैं गिन रही थी कि 7 क्लासें हुई हैं, कल नहीं परसों गिनी थी, लेकिन सेम स्केड्यूल था कल भी कि सुबह से लेके हमारे यहाँ से निकलने तक 7 क्लासें हमारे स्कूल में हुई हैं, तो ये कोई छोटी बात है? एक बंदे को भी उससे फ़ायदा हो जाए, 7 क्लासों में एक एक भी आ जाए अगर, तो लेकिन फ़ायदा ही होता है ना। असल जो बात है ना, आपके हौसले नहीं कमज़ोर होने चाहिए। आपके अंदर जब डीमोटिवेशन आता है, होना ही कुछ नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं, कर ही कुछ नहीं सकती, तो फिर नहीं होगा। आप जब करना चाहते हैं अल्लाह आपसे कराएगा। आप फिर इन जुमलों को सुनिए, इंसान की कामयाबी का साइज अगर इसकी सोच के साइज के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी सोच उतनी ही बड़ी कामयाबी, तो बड़ा सोचने में क्या बुराई है? सोचे बड़ा, थोड़ा क्यों सोचते हैं आप? बड़ी सोच रखने में क्या रुकावट है? क्या बुलंद सोच पे कोई टैक्स अदा करना पड़ता है या हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी है? कभी किसी को बुलंद वाला सोच रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया? मैं अजीब से सवाल पूछ रहा हूं, तो फिर आप ही बता दीजिए कि बड़ी सोच या बुलंद तसव्वुर जिंदगी रखने से हम सब इतना क्यों घबराते हैं? क्यों हम अपनी सोच को औकात में रखने की बात करते हैं? हम अपनी औकात की हदों को उम्र भर फैलांगने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? हमारी औकात तय करने का इख्तियार किसके पास है और उसे ये इख्तियार किसने दिया? ये जुमला सुना आपने, अपने औकात में रहो, अपनी हदों में रहो, मुंह संभाल के बात करो। भाई आपको किसने जरूरत दी कि आप मेरी औकात मुकर्रर करें, अल्लाह ने मुझे आज़ाद पैदा किया। तो ये नेगेटिव जुमले ज़िंदगी से निकाल दें, अपने गोल बनाए, मैंने बड़ा सोचना है, हो कुछ भी ना नो प्रॉब्लम। जो याद आ रही है कुछ टॉक्स दी हैं, नबियों की सोच हमेशा बुलंद होती थी, पुर उम्मीद, स्ट्रगलिंग। क्यों अल्लाह फिर काम कराता है अपने? इसलिए कि सोच बड़ी थी। तो आज के बाद कभी आपने छोटी सोच नहीं रखनी। हमारी सलाहियतों की हदूद तय करने का हक हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? किसी ने कह दिया कि तुम फलां काम नहीं कर सकते हो, और हमने इस जुमले को ही अपनी तकदीर समझ लिया। इसको मैं दोहराऊंगी, बड़ा खूबसूरत जुमला, तुम फलां काम नहीं कर सकते हो, हमने इस जुमले ही को अपनी तकदीर समझ लिया। हमारे बारे में किसी और की राय हमारी तकदीर कैसे बन सकती है? किसी का ख्याल हमारी मुसल्लिमा हकीकत कैसे बन सकता है? तो फिर आज हमने ये अभी तक जो बात सीखी है सब मिलके बोले हैं, वो क्या है? बड़ी सोच। करें कोई सोच, अपने लिए सोच रखें। आपको चंद सेकंड देती हूँ, कोई बड़ी सोच सोचें, और बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सोच रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको उतना बड़ा कर देगा। मैं तो सर सजदे से ना उठाऊँ ना, तो यकीन करे कि मुझे हक बनता कि मैं कभी ना उठाऊँ। कि जब जो सोचा अल्लाह ने करा दिया, जो चाह वो मिल गया, जिसकी ख्वाहिश रखी दिल में, ख्वाब में भी कोई चीज़ देखी है ना, अल्लाह उसको हकीकत बनाता है। शायद मुझे ऐसे लगता है कि बस अल्लाह को बंदे से यही चाहिए होता है, तुम सोचो मैं करता हूँ। मैं गिव अप कर दूँ ना तो सब ढाल दूँ, कुछ नहीं हो सकता। मजबूरियों की आंधियों में बह जाऊंगी, परेशानियों में दूँ, और ज़िंदगी का मुकद्दर जो है ना वो दुख रह जाते हैं। फिर ये भी याद रखिए, जो छोटी छोटी सोचों में, छोटे छोटे कामों पे राजी हो के सारी ज़िंदगी दूसरों के इशारों पे खेलते हैं ना, तो वो फिर मरते हैं तो किसी को फ़र्क कोई नहीं लगता। कहते चलो एक दिन जाना ही था, अल्लाह इनकी आखिरत अच्छी करे। लेकिन जब आप बड़ी सोच रख के जीते हैं ना, तो आप बहुत सारों को सोचना चाहते हैं, दूसरों को भी सोचना सिखाते हैं, तो आप दूसरी चीज़ पर चलते हैं। आप ज़रा ख़ुद भी तो सोचिए ना कि वो दूसरी क्या चीज़ है जो आपको सर उठा के जीने के काबिल करेगी। सोच तो रख ली, आप ज़रा स्टेप्स पे आए ना, सोच तो कर ली। तो सोचने में क्या, मैं सोच लूँ मैं अमेरिका की सदर बन जाऊँगी, तो सोचों में कौन से पैसे लगते हैं? जैसे अभी हमने देखा कि सोचों पे तो कोई टैक्स भी नहीं है, तो फिर यकीनन सोच के ऊपर भी एक चीज़ होगी, और वो क्या है? यकीन। बड़ी सोच रखे फिर उस पर यकीन करें, आई विल डू इट, मुझे यकीन है ये होगा, यही है। बिलाखिरती हूँ यूकीनून, जब तक जन्नत का यकीन नहीं आता ना, तब तक जन्नत भी कोई नहीं मिलती। सच बताऊँ आपको, दिल मिल यकीन आलों को बस अल्लाह ताला ने कोई शुरू की जन्नत देनी है। पूरे यकीन के साथ जन्नतुल फिरदौस मांगने वालों को अल्लाह ताला महरूम नहीं करेगा, ये अल्लाह का वादा। तो आइए देखते हैं कि यकीन क्या होता है, किस पर यकीन। पहली बात, अपनी ज़ात में यकीन। ये यकीन कि जो बड़ी सोच मेरे जहन में रंग भर रही है, ये रंग हकीकत का रूप धार सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर चंद सेकंड सोचने का मौका देती हूँ। अभी पिछले हिस्से में आपने कोई बड़ी सोच सोची है ना, तो अब आप यकीन दिलाएं खुद को कि ये होगा, इट विल हैपन। वो शहजादे की कहानी याद कर लें, उसका कुब ठीक हो गया था ना, तो ये भी दूर हो जाएगा, मेरी सब कमियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह कादिर है, मेरी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, मेरा अल्लाह शाफी है, मेरे सारे रास्ते के जो पत्थर हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि वो मेरा रब है ना जो कदीर है और कादिर है। आप इस तरह खुद से बातें करें, खुद को यकीन दिलाएं कि जो मैं सोच रही हूँ ये ज़रूर होगा, इंशाल्लाह होगा। अगर किसी न किसी तरह हम बड़ी सोच की राह पर चल भी पड़ें, अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी सोच, ख्वाब, मंजिल और कामयाबी पर नज़र रखना शुरू भी कर दें, तो अपनी ज़ात पर अदम एतमाद सारे ख्वाबों को चिकना चूर कर देता है। ये हो रहा है हमारे माशरों में, यकीन की फरावानी होगी तो बड़ी सोचें बड़े नताइज पैदा कर पाएंगी। लिखिए, यकीन की फरावानी बड़ी सोचों को बड़े नताइज में बदल देंगी। तो फिर आप कह लीजिए कि बड़ी सोच से भी अहम चीज़ क्या है, यकीन। आई कैन डू दिस, जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा यकीन दरकार होगा, ये भी लिखे। बड़ी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, अगर उसके साथ उतना ही बड़ा यकीन ना हो। फिर हम कहते हैं झाग की तरह बैठ गए, उठे थे बहुत जोश में, फिर होश आया तो बैठ गए। नहीं, बड़ी सोच तो बड़ा यकीन, फिर फ़ायदा होगा। अगर किसी न किसी तरह हम बड़ी सोच की राह पर चल भी पड़े, अपनी औकात से बड़ी सोच, तो लोग क्या करते हैं, हमें पीछे डाल देते हैं। कैसे? अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी सोच, ख्वाब, मंजिल और कामयाबी पर नज़र रखना शुरू भी कर दें तो अपनी ज़ात पर अदम एतमाद सारे ख्वाबों को चिकना चूर कर देता। यकीन की फरावानी होगी तो बड़ी सोचें बड़े नतायज पैदा कर पाएंगी। जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा यकीन दरकार होगा। बेयकीनी बुलंद सोचों को सर निगूं कर देती है, ये भी लिख ले। बड़ी सोचें अपनी मौत कब मरती हैं? जब बेयकीनी आती है। बेयकीनी अमल की ताकत छीन लेती है। ऐसे जुमले एक लाइन में बस एक ही लिखा करें ताकि एक नज़र में नज़र पड़ जाए। बेयकीनी बुलंद सोचों को सर निगू करती है और अमल की ताकत छीनती है। बेयकीनी बढ़ते कदम उखेड़ देती है। बेयकीनी जीती हुई बाजी हरा देती है। बेयकीनी इरादों को खोखला कर देती है। बेयकीनी सोचों को बंजर कर देती है। बिलाखिर यही बेयकीनी आपको शुकूक व शुबहात के रहमो करम पर छोड़ देती है। तो आप देख रहे हैं कि बेयकीनी कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो फिर बेयकीनी का तोड़ क्या है? और वो है यकीन। वो यकीन जो कोहे हिमालिया के पांव हिला दे, उखाड़ दे, इसे मुतजलजल कर दे। यानी यकीन की दौलत अपने अंदर लानी है। यकीन की कहानी समझने के लिए आपके सामने फैक्ट्री की मिसाल पेश है। आपकी ज़िंदगी की तमाम तर कामयाबियाँ या नाकामियाँ आपकी अपनी फैक्ट्री की पैदावार हैं। कौन सी फैक्ट्री? दिमाग की फैक्ट्री, जहन की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए आपने दो मैनेजर रखे हुए हैं, कोई बता सकता है क्या? यानी आपके जहन की फैक्ट्री को मैनेज कौन करता है? मैनेजर एक नहीं दो। कौन है वो? वो तो खुद दिमाग के अंदर ही सब हो रहा है जी। काफी करीब है आप जी। आप इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए आपने दो मैनेजर रखे हुए हैं। एक का नाम है मिस्टर फतह और दूसरे का है मिस्टर शिकस्त। जिस मैनेजर को गालिब कर लें आपको वो मिलेगा। मिस्टर शिकस्त का एक ही काम है। मिस्टर शिकस्त नाम के मैनेजर क्या करते हैं? नंबर एक, मनफी ख्यालात को तकवीयत देना, हौसला शिकनी, नाकामी और बेहिम्मती। हर वक्त आपको लट डाउन करता है आपके अंदर का वो जज्बा कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको तो शिकस्त ही होनी है। और बेहिम्मती जैसे ख्यालात की हौसला अफजाई करना। प्रोडक्शन का प्लान चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर के मुताबिक डिलीवरी की आखिरी तारीख सर पर तलवार की तरह लटक रही हो, फैक्ट्री की मसनूआत को फैलाने प्रमोट करने के चाहे कितने ही ज़बरदस्त मौके हों, आपकी सलाहियतों के खरीदार हेड ऑफिस में आपकी मसनूआत का चाहे कितनी ही बेताबी से इंतज़ार क्यों ना कर रहे हों, मिस्टर शिकस्त आपकी फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन तक ये मनफी प्रोपेगंडा फैलाएंगे, आज तो ये मुमकिन नहीं है, ये तो हो नहीं पाएगा, मुश्किल मुश्किल, नामुमकिन नामुमकिन, वगैरह वगैरह। सच है कि नहीं? और यकीन कीजिए आज उम्मत होने के नाते भी बास लोग हमारी हिम्मतें तोड़ते हैं। आजकल दुख की बात है, वैसे तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ तो मुझे खुद भी कभी मौका मिला, लेकिन अंदाज़ा होता है मीडिया के ज़रिए से बास ऐसे लोग तबसरे करते और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते नज़र आते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान डूब गया, ख़त्म हो गया, खा गए, लूट गए, कुछ नहीं होगा बर्बाद, और तुमने तो कभी संवरना ही नहीं। सुनी हुई ये बातें, ये हैं वो लोग जो ये कहते हैं ना मुसलमान ख़त्म, नाम भी गया अब ये सब ख़त्म होगा, वो ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा मिस गाइड करते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं, कुछ कर ही नहीं सकती हैं आप। इसके बरक्स देखिएगा दूसरी तरफ मिस्टर फतह का काम क्या क्या है, लिख लें, हौसला बढ़ाना, मुस्बत पैगामात की इशात करना, तवानाई के इंजेक्शन लगाना, तारीफ और हिम्मत अफजाई के मीठे बोल बोलना, और कर दिखाने की लगन पैदा करना। जब मिस्टर फतह एक्शन में हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। बात वाज़े, तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दें, ये जो मैनेजर है ना शिकस्त वाले इनको निकाल दें, ले ऑफ कर दें, हमेशा कहें मैं कर सकती हूँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल। वो कहते हैं ना कि हर इम्पॉसिबल के अंदर से पॉसिबल निकलता है, यस इट्स पॉसिबल। आपके ख्याल में किन साहेब की प्रमोशन होनी चाहिए और किन साहेब को गेट की राह दिखानी चाहिए, शिकस्त या फतह? फतह वाले की प्रमोशन और शिकस्त वाले को छुट्टी करा दें। आपका जवाब तो सही है, लेकिन जब आप अमलन फैसला कर रहे होते हैं तो ताले बेचारे मिस्टर फतह की जुबान पर लगवाए जाते हैं, ऐसे ही, और प्रमोशन पे प्रमोशन देते रहते हैं आप मिस्टर शिकस्त को। याद कीजिए शुरू में मिस्टर शिकस्त एक मामूली वर्कर था जिसे अब आपने फैक्ट्री मैनेजर का दर्जा दे दिया, ये भी ट्रू है, समझ आ गई ये बात ना। शुरू में शिकस्त नाम का कोई नहीं होता मैनेजर, ये हम इसको खुद बना लेते हैं, पहली नाकामी पे हिम्मत टूटी, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर कहते हैं अब बस इन्हीं का हुक्म चलेगा। इसलिए कभी भी गिरने वालों को गिरता नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ थाम कर पकड़ लीजिए। ज़रा सोचिए जब किसी अहम जगह पर आपका इंटरव्यू हो या बॉस के साथ अहम रिपोर्ट पर डिस्कशन हो या किसी कस्टमर के सामने सेल्स प्लान रखना हो तो आपके अपने जहन की अपनी फैक्ट्री में किस तरह मिस्टर शिकस्त मिस्टर फतह को चुप करा देते हैं, यानी अमूमन हम नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाबियां चाहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके जहन में होती है तो फिर इस फैक्ट्री का चार्ज किसके हाथ में होना चाहिए, मिस्टर फतह के या शिकस्त के, बताइए। फतह के। मिस्टर फतह जैसा यकीन जहां पहाड़ों को हटा सकता है वहां मिस्टर शिकस्त की ज़रा सी बेयकीनी ख्वाबों के घरौंदों को मलिया मेट कर सकती है। यकीन आपकी कामयाबी के लिए थर्मोस्टेट की हैसियत का हामिल है, ये जुमला लिख लें। थर्मोस्टेट क्या? हीट इतने पे सेट कर दें, थर्मोस्टेट जो होता है ना उस पर आके आपको पता है कि एसी भी रुक जाता है और हीट भी रुक जाती है, फिर उसी को बस मेंटेन करते हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में कम हासिल किया रिसर्च करके देख लें, उन्होंने जिंदगी में खुद पर यकीन भी कम कर दिया है, सारा दिन खुद को दबाने वाली सोचों की जंजीरों से निकली है और खुद को उठाने वाली सोच पे भी जरा कान धरिए। अपने अंदर से उठती सिसकती आवाजों को सुनिए, ये आवाजें आपको कब से यकीन दिलाना चाह रही हैं कि आप कितने बासलाहियत हैं, आप में क्या कुछ छुपा है। खुदा के लिए अपने अंदर की असल शख्सियत को बनने संवरने उभरने और निखरने का मौका दीजिए, देना चाहते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि हम सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो फिर दूसरी इसकी सीढ़ी क्या हुई? यकीन, आई विल डू। पहली क्या थी? बुलंद सोच। दूसरी क्या है? तो तीसरी क्या होगी? अब आप सोचिए। अमल जी, और कुछ किसी के जहन में आया इससे मुख्तलिफ? तीसरी चीज है चैलेंज। चैलेंज कर दे लोगों को, फिर लोग आपसे खुद ही करा लेंगे। सर उठा के जीने, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए तीसरी जरूरी चीज है चैलेंज। क्या आप अपनी जिंदगी में कोई बामानी चैलेंज रखते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई बामानी चैलेंज है? अगर चैलेंज के बगैर शख्सियत बनती और निखरती नहीं तो चैलेंज से बचकर भाग जाने वाले, छुप जाने वाले, रास्ता बदल जाने वाले आंखें चुरा लेने वाले लोगों की शख्सियत क्या खाक नशो नुमा पाएगी? चैलेंज के बगैर काम नहीं होते। बाज़ दफ़ा देखे ना, सोई हुई सलाहियतें भी जाग जाती हैं और बंदे की, जब उसको चैलेंज करता है और तुमने कोई नहीं करना, कहता है अच्छा करके दिखाता हूँ, फिर देखिए जो आप दौड़ते हैं। कोई कहता है तुम्हारा घर तो कभी साफ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, आप कहते हैं अच्छा ये कहते हैं आज करके दिखाती हूँ, फिर उस दिन जो सफाई होती है किसी का ये एक्सपीरियंस? चैलेंज ले, खुद को चैलेंज करें। हम सभी भगोड़े हैं, हम एतराफ़ नहीं करते, मानते नहीं, क्यों? इसलिए कि मान जाने से अना को बड़ी ठेस पहुंचती है। मगर मैं मानता हूं हजारों लोगों को मोटिवेशन की चाबी देने वाली किताब, शाबाश तुम कर सकते हो। लिखने के बाद भी आप शायद नहीं मानेंगे कि मैं भागता रहा हूं चैलेंजेस से, मुश्किलात से। क्या आप मानेंगे कि दूसरों को डटे रहने का हौसला देने वाला कई बार डटे रहने की बजाय फरार होने में सुकून ढूंढता रहा है? यानी अपने बारे में कह रहे हैं, यानी किसी को ये कह देना ना शाबाश, जो उसके अंदर ताकत भरता है। चार लफ्ज हैं और मैंने खुद ये आजमा के देखा है, कभी भी को बहुत अच्छा काम, सारी हर वक्त ही अच्छे काम करते हैं, ईमेल्स आती जाती हैं, तो कम से कम जो चार लफ्ज लिखूँ वो यही लिखती हूँ, शाबाश। बस मुझे लगता है इससे उनके अंदर जो जान पड़ जाएगी ना, वो इनको और काम करने के काबिल कर देगी। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम खुद को सोचें, हौसले दें, हिम्मत दें, चैलेंजेस करें डटे रहने के। बस लोग क्यों ऐसे करते हैं, आखिरी पैराग्राफ है, क्या आप मानेंगे कि दूसरों को डटे रहने का हौसला देने वाला कई बार डटे रहने की बजाय फरार होने में सुकून ढूंढता रहा है? पता है क्यों? बात बड़ी आसान सी है, डटने की बजाय भागना आसान है। भागने से सारी तकलीफें छट जाती हैं, हमारे तहफ्फुज को कोई खतरा लाहक नहीं रहता। इसके बरक्स चैलेंज का मुकाबला करने की सूरत में हमें बे आरामी को गले लगाना पड़ता है। ये लिखें, इन सारी बातों में से जो अंदर निकला ना, आराम छोड़ना पड़ेगा। बे आराम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अपने खौफ की आंखों में आंखें डालनी पड़ती हैं, खुद को टेस्ट करना पड़ता है। इससे कहीं आसान है कि तस्वुराती खौफ के पहाड़ खड़े कर दिए जाएं, जिन्हें उबूर करना मुश्किल दिखाई देता है। जब इन तस्वुराती पहाड़ों के बारे में इतनी कसरत और खुलूस से सोचना शुरू कर दिया जाए तो वो हकीकी रुकावटों का रूप धार लेते हैं। समझ आ रही ये कौन सा इखलास है? रुकावटों के मामले में बड़े मुखलिस हैं, यानी हमें बड़ा यकीन है कि मेरी रुकावटें बड़ी जेन्युइन है, मेरे सब रीजंस बड़े जेन्युइन है, ये मुराद है। सर उठा के जीने के लिए चैलेंज लेना ज़रूरी है। जितना बड़ा चैलेंज होगा इसे पिछाड़ने की खुशी भी इतनी ही ज़्यादा होगी। चैलेंज से घबराइए नहीं, आगे बढ़कर इसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये चैलेंज ही तो है जो आपको आपसे मिलवाता है, छुपी सलाहियतों को निखारने का मौका देता है, खुद एतमादी सिखाता है और सबसे बढ़ के खुद एतमादी में इजाफे का बायस बनता है। सच है कि नहीं? तो फिर क्या करें? तो फिर खुद से वादा कीजिए कि सर उठा के जीना है, सोच को बुलंद रखना है, यकीन को कामिल करना है और अपने लिए चैलेंज ढूंढना है। अपने लिए हर रोज एक नया चैलेंज रखने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। हर चैलेंज को मात देने से ही यकीन अफरोज होता है, सोच खुद ब खुद बुलंद से बुलंद तर हो जाती है और चैलेंजेस से खेलना जिंदगी का मामूल बन जाता है। फिर आपको खुद भी नहीं पता चलता कि कब दुनिया आपको सर उठाकर जीने के लिए अपना रोल मॉडल समझने लगती है। यानी कल के दबे हुए लोग आज दूसरों को राह दिखाने वाले बन गए। तो ये था आपका मेरा ख्वाब। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं छोड़ देना। ये पैगाम है हमारा एक दूसरे के नाम कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करो। और आप इन सारी चीज़ों को आप देखिए, हमने तो इसको पर्सनल ग्रूमिंग में किया ना, आप देखें कि कुरान और हदीस इसी बात का सबक देते हैं। मुझे पढ़ने के दौरान कई बातें याद आ रही थी, आयतों की, वाक्यात, लेकिन मैंने सोचा कि टेम्पो यही रहे तो बेहतर है। अब आप कुछ बोलिए। ठीक है,
मुझे पता है कि मैं जो सोचते हैं, मैं जो खामोश ज़्यादा रहती हूँ, मैं अपने आप को टेररिस्ट के साथ दिखा रही होती हूँ कि मैं कहाँ पे, यहाँ पे फिट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ये फोन का आया तो मैं कहती हूँ मुझे अपनी ज़ात पे ध्यान, में से अगर मैं किसी चीज़ पे स्टेप हार डाल रही हूँ मैं अपनी ज़ात पे यकीन रख के नहीं डाल रही, मुझे पता है मैं नहीं कुछ कर सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहता।
जी शाबाश।
और फिर ये कि फिर मुझे अल्लाह ताला की कलमाए कुन होने के उनके पास वो अल्लाह ताला कलमाए कुन कहते तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं, तो मैं अल्लाह से यही मांगती हूँ कि मुझे मुझे तो लग रहा है मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी खातिर ये काम कर रही हूँ और आप मुझे पता ये कर सकते हैं कि आप।
जी शाबाश। आपने जो बात सोची वो मेरे भी जहन में बीच में आई थी कि ये तीन स्टेप्स है ना, लिखें ज़रा आपको, मैं इसको थोड़ा सा इस्लामिक सिनेरियो में दिखाती हूँ। बड़ी सोच, यकीन और चैलेंज, इन तीनों को लिखिए ज़रा ऊपर नीचे, एक लफ्ज़ को एक जगह लिखें। इस्लाम हमें बड़ी सोच क्या देता है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फलाह क्या होती है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी। दुनिया में अल्लाह की रज़ा के साथ मुसलमान जिएं और आखिरत में जन्नत और अल्लाह की रज़ा पाएं। तो बड़ी सोच दी है इस्लाम ने हमें, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। चलिए आगे, यकीन। यकीन किस पर है? बंदा मोमिन का यकीन अल्लाह पर होता है। ए अल्लाह, मैं एक कमज़ोर सा तिनका हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन तेरे यकीन पर काम करती हूँ। जैसे आपने फरा जो बात कही ना, उसको देखकर मेरे जहन में एक मिसाल याद आई, एक आज की बात में भी ये हुई भी है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड। बेल देखी है कभी आपने, जो ज़मीन पे फैलती है ना, छोटी सी होती है, पाँव में आएगी तो क्या होगा, मसली जाएगी ना। और दरख्त भी देखा होगा, मजबूत होता है ना। कोई बेल जब अपनी ज़ात पे होती है तो ज़मीन पे बिछती है, बकरियां चर जाएं, लोग उसको खा जाएं, कीड़ा लग जाए, और जो ज़मीन पे बेल होती है ना उस पर अगर कद्दू टिंडे लग भी जाए ना तो अमूमन नीचे से दागी हो जाते हैं। आप उस बेल का एक सिरा पकड़कर ऊपर किसी चीज़ से बांध देते हैं, दरख्त की शाख से या छत से, तो क्या होता है, वो बेल पूरी छत बन जाती है। मैं और आप क्या हैं? कमज़ोर बेलें हैं। और अल्लाह का सहारा क्या है? मजबूत करता है। कुरान की कोई याद आई है आपको? जी शाबाश। वो भी है, वा तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, उससे पीछे एक आयत जी, कद तबैना रुश्तु मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फकद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का लन्फिसाम लहा। आयतुल कुर्सी के फौरन बाद की आयत है। ये जो उरवतुल वुस्का है ना, ये अल्लाह का हाथ, ये थाम लेना तो हमारी ये छोटी छोटी सलाहियतें अल्लाह बढ़ाता है। मेरे और आप में क्या ताकत है? हमारा यकीन अल्लाह पे है। वही मिसाल आपको दी है कि एक लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए जरा बंद, अब इसके आगे एक जीरो लगाएं, क्या बना? एक और लगाइए, क्या बना? फिर क्या लगाइए, लगाते जाइए, बोलते जाए, मुझसे एक जीरो लगाए, रुंची वास्ते सब बोले, एक से दोबारा शुरू करें। आगे एक और बोल दें, लाख। अब आप वन को गिरा दें, इसको काट दें, क्या बना? एक लाख क्या बन गया? जीरो। एक लाख जरब जीरो क्या होगा? जीरो होगा ना। अब ये एक क्या है? आप खड़े हुए अल्लाह के रास्ते में बड़ी सोच लेकर, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह ने अपनी मदद का एक जीरो लगाया, क्योंकि अल्लाह जितनी भी आपकी मदद करेगा ना वो उसकी ताकत के मुकाबले में ज़ीरो है। आप खड़े रहे, अल्लाह ने एक और लगा दिया। आप खड़े रहते ना, अल्लाह आपकी मदद करता जाता है, तो आप ज़ीरो से दस, दस से सौ, सौ से हज़ार, फिर दस हज़ार, फिर लाख, फिर दस लाख बनते जाते हैं। शर्त एक ही है कि आप खड़े रहें, और आप गिर जाएं, छोड़ दें इस काम को, तो अल्लाह की सब मदद आपके हक में बेकार होगी। चलिए तीसरी चीज़ क्या थी? चैलेंज। अल्लाह ने हमें क्या चैलेंज दिया? जी शाबाश। फमन यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्ला, ठीक है जी। और शरीयत के दायरे में रहो, ठीक है जी। जिहाद बिन नफ्स, शाबाश, गुड जी। नेक्स्ट, जिंदगी एक चैलेंज है।
नेक अमाल का कहा है कि अगर जो मुश्किलात से लड़ के नेक अमल करेगा,
मुकाबला करना जी। और उमे बीबा, दुनिया में रहते हुए तैयारी वहाँ की जी। और आप, نفس کے ساتھ جہاد. جی آپ, گناہوں سے جہاد. دیکھیے ڈے ون پہ ایک ٹیمپو ہو گیا تھا, شیطان جس کو آپ کہیں گے ابلیس نے کیا کہا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, سورۃ الاعراف. یہ جو شیطان کو کھلی چھٹی مل گئی تھی نا کہ جاؤ تو ان سب کو بہکا لے, لیکن تیری بات جو ہے وہ مخلص لوگ نہیں مانیں گے. تو ہم سب کے لیے جنت میں جانا اور شیطان کے چنگل سے خود کو بچانا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اللہ اجرنی من النار, کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے دل پر لینے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.